ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्राप्तजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयम् उद्मानतु। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि चरणं।
अब हम लोगों ने बतलाया था जीव सुख पाना चाहता है, दुख नहीं चाहता, किंतु पा रहा है ये दुख ही। करोड़ों जन्मों से सुख पाने की चेष्टा करते हुए नहीं पा रहा, जरा मरण इत्यादि ये सब रोग लगा है। तो इसका कारण क्या है? भगवान का भूल जाना। जिसके हम अंश हैं, जिन्होंने हम लोगों को यह मनुष्य जन्म दिया है, सारी सुविधाएं दी हैं, उनको हम लोग भूल गए। क्यों भूल गए? ब्रह्म तो बृहद वस्तु है, उसको उसी की माया है, इसलिए उसको तो नहीं ढक सकती। किंतु जो लोग हम लोगों का स्वरूप बहुत अणु है, इसलिए माया इसको ढक देती है। तो फिर सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जिसलिए भगवान को भूलने की वजह से ये दुख हुआ है, फिर उसी भगवान का किसी प्रकार से स्मरण हो जाए इस जीवन में, तो ये सब दुख दूर हो जाएंगे। जन्म मरण का कष्ट भी दूर हो जाएगा और सदा के लिए आवागमन बंद भी हो जाएगा और नित्य स्वरूप में रह करके नित्य भगवान की सेवा कर सकते। किंतु यह होगा कैसे? पूर्व पूर्व सुकृति से, भगवान की किस सेवा से, अथवा भगवत संबंधी किसी भी वस्तु के संपर्क में आने से सुकृति होती है। ऐसे सुकृति होने से गुरु या वैष्णव मिलते हैं, ऐसे सहज नहीं मिले। मिलने पर भी उसमें विश्वास नहीं होगा। कर्मी गुरुओं पर या और सब गुरुओं पर, ज्ञानी गुरुओं पर विश्वास हो जाएगा, उधर में आकर्षण आएगा। शुद्ध भक्ति की तरफ में वह आना नहीं चाहेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, व्यास जी का और नारद जी का संवाद है। रसानंद जी, जरा बोलो तो इसको और गुरु तत्व के शब्द, तब फिर हम बोले।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
मैं सबसे पहले अस्मद्य गुरुपाद वदम नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी को चरण सरज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात अस्मद्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राज का आचार्य त्रिदंडी स्वामी से श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपातगण एवं वैष्णव वैष्णवियों को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। श्रील महाराज अभी कथा प्रसंग में बताए कैसे जीव पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति के अनुरूप जीव को भाग्य में कैसे सद्गुरु की प्राप्त होता है, जिसको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हुए श्री चैतन्य चरितामृत में एक रूप शिक्षा नाम का एक सब्जेक्ट है, विषय है, वहां पर श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी को निमित्त करके उन्होंने रूप शिक्षा को रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। उसमें बताया ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कैसे जीव 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्मों से भटकते भटकते जीव का जब संपूर्ण दुख की समाप्ति होने को आता है, तब जीव को सौभाग्य में कोई सद्गुरु की प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया भागवत में एक श्लोक में बताया भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जन्नस्य तहीर अच्युत सत्समागम सत्समागम जहीर तदेव परावरे से जाए तो रति। जीव कैसे 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म भटकते भटकते जीव का जब संसार का दुख कष्ट को समाप्त होने को आता है और भगवान अपना चरण कमल में जीव को बुलाना चाहते हैं, कहते उसी समय कोई एक सौभाग्यवान व्यक्ति का जीवन में सद्गुरु का प्राप्त होता है। जीवन में सद्गुरु सत संत पाना बहुत ही कठिन है, जिसको स्वयं वसुदेव महाराज भी बताते हैं, कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते किसी समय श्री वसुदेव महाराज देवकी स्वयं कृष्ण एक विश्व शांति यज्ञ की अनुष्ठान कर रहे थे, जिस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने आह्वान किए और वहां पर कृष्ण वसुदेव महाराज सब बैठ करके सब इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा सब स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। हठात उन लोगों ने देखा आकाश मार्ग से कोई एक दिव्य ज्योति उतरते हुए आ रहा है। सब लोगों ने देखने लगे ये ज्योति कहाँ से आ रहे हैं। देखते देखते धीरे धीरे जब वो ज्योति नित्य उतरा, देखा वो ज्योति नहीं वो स्वयं नारद ऋषि है। उसी समय उन लोगों ने जो यज्ञ कर रहे थे, वसुदेव महाराज कृष्ण खड़े होकर के बोले आज यज्ञ करने का कोई जरूरी नहीं है, किंतु यज्ञ का जो पूर्ण फल स्वरूप में ये नारद बाबा आ गए, यज्ञ को बंद करो। और नारद ऋषि को बैठा करके उनको चरण में कृष्ण वसुदेव बैठे करके उनको चरण में ये प्रार्थना कर रहे हैं, कहते दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम। कहते एक में तो ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख भ्रम के ये नरतनु देही 84 लाख जन्म भटकते भटकते बड़े भाग्य से ये इंसान का जीवन प्राप्त होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है। कहते तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक में तो ये इंसान का जीवन दुर्लभ है, लेकिन जीवन में जो सद गुरु प्राप्त करना कहते और बहुत ये और भी बड़ा दुर्लभ है। अभी अभी महाराज बता रहे थे अगर हमारे ऐसे अच्छा कोई कर्म नहीं होएगा, फिर हम कोई कर्मी गुरु कोई जोगी कोई ज्ञानी को फिर में हम पड़ जाएंगे,
फिर शुद्ध भक्त फिर जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में शुद्ध भक्तों को प्राप्त करना बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से कोई शुद्ध भक्त की साक्षात्कार मिलता है। इसलिए जीवन में सदगुरु प्राप्त करना बहुत कठिन है। अभी अभी महाराज जी प्रश्न उन्होंने उत्थापन किया था कि जिस समय हमारे सौनकादि ऋषि लोग सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, उनका पहला प्रश्न यही था जगत में महाराज जो प्रश्न किया था, जगत में ऐसे कोई जीव नहीं जो सुख और शांति नहीं चाहता है, एक चिट्ठी से लेकर हाथी तक भी शांति और सुख का अनुसंधान करते हैं, लेकिन जीवन में वास्तव रूप में जीव को शांति और सुख मिले कैसे, जीव को ये शांति सुख मिलेगा कैसे, ये सौनकादि ऋषियों का पहला प्रश्न है। और उसका उत्तर स्वरूप में श्रील सुत गोस्वामी कहते हैं, कहते सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति सजे आहे तो की अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे। कहते सबई पुंसांग पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जी, कहते हर व्यक्ति का सबई निश्चित रूप में जीव का परम कर्तव्य क्या है, जगत में सब लोग यही प्रश्न, एक ही प्रश्न है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करनी चाहिए, जीवन में हम सुखी बनेंगे कैसे, उसका उत्तर देते हैं। कहते सबई पुंसा, पुंसा मतलब पुरुष मात्र के, जीव मात्र के, वही श्रेष्ठ धर्म है। क्या श्रेष्ठ धर्म है, जब तो भक्तिर अध्यक्षजे, अध्यक्षजे मतलब होता है जो कि हमारा जड़ इंद्रिय से, जड़ बुद्धि से जो अतीत है, जो ऊपर है, कौन है, कहते भगवान श्री कृष्ण है। कहते उनको जो भक्ति, कहते भक्ति किस रूप में होनी चाहिए, कहते जीव का परम कर्तव्य उनको भक्ति करना, लेकिन वो भक्ति किस रूप में भक्ति करनी चाहिए, कहते अहैतुकी, वो भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, उसको बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, प्रभु हमारे प्रभु है, हम उनको दास है, हमारा कर्तव्य है उनको सेवा करना, जिसके लिए हमारे रूप गोस्वामी एक बहुत भक्ति की एक सुंदर डेफिनेशन पूर्वक एक श्लोक को बताते हैं। वो श्लोक में उन्होंने यह विवेचना किया, कहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति ऋतुमा। भक्ति की संपूर्ण विवेचना, हम कहते भक्ति क्या है, हम बोलते हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति है क्या चीज, अगर कोई प्रश्न करे तो भक्ति की सुंदर रूप में विवेचना रूप गोस्वामी ये श्लोक में करते हैं। कहते भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति का बीच में कोई रुकावट, कोई अभिलाषा, अभिलाष नहीं होनी चाहिए, हम इसलिए भक्ति करते हैं, हे प्रभु मेरी लड़की की शादी हो जाए, नहीं तो हमको रुपया पैसा मिल जाए, संसार में सुख मिल जाए। कहते नहीं, फिर ये भक्ति नहीं हुआ है, इसलिए भक्ति ऐसे होनी चाहिए, कोई अभिलाषा उसमें नहीं रहनी चाहिए, प्रभु मेरे प्रभु है, जैसे हनुमान बोलते हैं राम सेवा को छोड़ करके मेरा विश्राम कहाँ है, राम सेवा ही मेरा जीवन का सर्वस्व है, राम सेवा के लिए जैसे हनुमान संपूर्ण जीवन को उन्होंने समर्पित करके रखा, उसी तरह गोपियां जैसे कृष्ण सेवा के लिए उनको विनिमय में कुछ नहीं मांगती हैं, प्रभु आप मेरे प्रभु हो, हम तुम्हारा सेवक है, हमारा कर्तव्य आपको सेवा करना, इसलिए भक्ति ऐसे होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए,
संसारिक अभिलाषा नहीं होनी,
उसमें किसी तरह की सांसारिक की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कभी कभी हम भक्ति करते हैं लेकिन उसमें हम किसी, जैसे कोई ब्रह्मवादी का संग कर रहे हैं, कोई मायावादी जो भगवान को निराकार निर्विशेष और लास्ट में जाकर हम वो ज्योति में लीन हो जाएंगे, अगर इनको साथ में अगर हम मिल गए तो कहते भाई वो लोग भी तो भजन करते हैं, वो भी तो भक्ति करते हैं। कहते नहीं, उनका भक्ति भी भक्ति नहीं है, जो भगवान को निराकार निर्विशेष मान करके और मुक्ति चाहते हैं और उसमें साजू जो उसमें मिल जाना चाहते हैं, तो वो भी भक्ति नहीं। कहते क्यों, कहते सबसे ये लोग बड़ा ज्यादा कपटता है। कहते कपटता किसे कहते हैं, कहते कपटता कहते हैं उससे, प्रभु हमारे प्रभु है और हम उनको सेवक है, हमारा कर्तव्य उनको सेवा करना। और ज्ञानी लोग जो ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं, क्यों? कहते संसार में दुख कष्ट है, जब तक ये संसार में हम रहेंगे तब तक ये दुख कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, इसलिए हम जाकर के ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाए। लेकिन लीन हो जाने पर उसमें मिलता है क्या? जैसे कि पत्थर जैसे कि सहनशील होकर के बड़ा रहता है, कहते तो उनको गति वैसे गति है। और उनको कहते सबसे बड़ा कपटता, कहते क्यों कपटता? कहते यहां पर कोई प्रभु की सेवा नहीं, वो प्रभु की सेवा नहीं चाहते हैं। हम संसार में हमें दुख मिल रहा है, ये दुख से हम परपार चल जाकर के वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, लेकिन उसमें प्रभु का क्या होगा? उसमें कोई प्रभु की सेवा होगा कुछ नहीं है, इसलिए केवल इसमें आत्म स्वार्थ ही केवल। इसलिए कहते हैं मुक्ति वाचा तार मध्य मुक्ति वाचा कैटव प्रधान जा है ते कृष्ण भक्ति आहे हाय अंतर ध्यान। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति वहां से अंतर ध्यान हो जाती है, क्योंकि वहां कपटता युक्त है, वहां पर कोई प्रभु की सेवा नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान को द्वारा जो भगवत भक्ति उसमें नहीं ढकनी चाहिए। और हमारे गोस्वामी लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते ज्ञानी लोगों को देखने पर जो ब्रह्मवादी वो भी ठाकुर का नाम करते हैं, वो भी कीर्तन करते हैं, वो भी भगवत भक्ति को जाजन करते हैं, कहते वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। कहते नहीं, कहते उनका भक्ति भक्ति नहीं। उसके लिए बहुत ही एक अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते जैसे किसी व्यक्ति को कोई भूत पकड़ा है, जब किसी व्यक्ति को कोई भूत पकड़ता है, आप लोग जो देखे होंगे देखिएगा, एक आदमी 10-15 आदमी खाना खा लेता है, लेकिन वो जो व्यक्ति खाता है इतना, लेकिन वो व्यक्ति धीरे 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 दुबला पतला होते जाता है, धीरे धीरे सूखते जाता है। कहते क्यों? एक व्यक्ति 10-15 आदमी को खाना खा रहा है, वो धीरे धीरे सूखते क्यों जा रहा है? कहते ऊपर से दिखाई पड़ता है ये व्यक्ति खाना खाता है, लेकिन जो प्राप्त किसको होता है? कहते उसको अंदर में जो भूत बैठा हुआ है, कहते उसको ये वस्तु प्राप्त होता है, जो खाने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। कहते उसी तरह हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची चावत हृदय वर्तते। कहते जब तक जीव का हृदय में ये भुक्ति और मुक्ति भोग की इच्छा और मुक्ति की वासना रहे, कहते ये पिशाच है, ये पिशाच है। इसलिए ऊपर से दिखाई पड़ता है भक्ति करता है, लेकिन उसका हृदय में जो पिशाच मुक्ति रूपी जो पिशाच बैठी हुई, कहते उसको सब प्राप्त होता है, उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमको मुक्ति नहीं चाहनी चाहिए, ज्ञान का तरफ में नहीं बढ़नी चाहिए, कहते इसको द्वारा नहीं ढकनी चाहिए। कहते कर्म, कर्म उसे कहते हैं जहां पर स्वयं हम कर्ता मान करके हम किसी क्रिया को करते हैं और उसको स्वयं भोक्ता बनते हैं, ये फल का भोक्ता हम स्वयं, कहते इसको द्वारा भी भक्ति नहीं ढकनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, कहते उसको द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी जो हम कथा सुना रहे हैं भागवत कथा, ये भी तो एक ज्ञान है, ये भी तो एक ज्ञान है ना, या ये ज्ञान को छोड़ दे? कहते नहीं, भगवत भक्ति रूपी जो ज्ञान है वो तो होनी चाहिए, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा। इसलिए ये भगवत भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए, जीव कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है, कृष्ण कौन है, हम इस जगत में क्यों आए, कहते अभी तक ज्ञान है। कहते नहीं, भगवत भक्ति युक्त ज्ञान होनी चाहिए। और कर्म, कृष्ण गीता में बोलते हैं नहीं तिष्ठति क्षणापि, कहते एक मुहूर्त कर्म के छोड़कर हम रह नहीं सकते, हम जो खाते हैं देखते हैं श्वास लेते हैं चलते हैं तो ये भी तो कर्म है, कहते इसको भी क्या छोड़ दे? ठाकुर को जो हम सेवा करते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं, ठाकुर को श्रृंगार करते हैं, कहते ये भी तो एक कर्म है? कहते नहीं, कहते जहां पर इस शरीर में मैं और मेरा बुद्धि रख करके और स्वयं कर्ता बन करके फल की भोग करता हम स्वयं, जहां पर ये बनते हैं, कहते यहां पर दोष है। लेकिन जहां पर हम मानते हैं हम गुरु जी का सेवक है, हम कृष्ण दास है, हम भगवान का भक्त है, उनके लिए फूल माला बनाती जैसे गोपियां जैसे मैया जसोदा कृष्ण सेवा करती हैं, कहते वो भी तो कर्म है? कहते नहीं, भगवत भक्ति युक्त कर्म तो होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा, जो काम करने पर भगवान संतुष्ट होते हैं ठीक वैसे ही काम करना, इसका बहुत व्याख्या है। इसलिए ये जीवन है बड़ा दुर्लभ जीवन है, और ये दुर्लभ जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ है जीवन में अगर कोई सद्गुरु की प्राप्त हो, कहते ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। आज हमारे वह सौभाग्य है हमारा बीच में ऐसे हमारी शुद्ध गौड़ीय परंपरा में, प्रभु माध्य गौड़ीय संप्रदाय का परंपरा में, जिस परंपरा में यहाँ पर गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा माधव, जिस परंपरा में सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव का परंपरा में है, ये सारे ठाकुर जिस जयपुरी में आप लोग वास कर रहे हो, इसलिए जिनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपना भक्ति का बल पर इन लोगों ने साक्षात भगवान को उन लोगों ने प्रकट किया है, उनके हृदय में ऐसे भगवत भक्ति थी, अभी वो ठाकुर अभी यहीं पर है, इसलिए इसी परंपरा में ही ये गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ की परंपरा में ही हम लोग है और उसी परंपरा में ही हमारा महाराज है। इसलिए आप लोगों का आज बड़े सौभाग्य दिन है, ऐसे संतों का मुखार बिंद से भगवत कथारूपी मंदाकिनी में, भगवत कथारूपी जो अमृत में गोता लगाने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, समझिएगा आप लोगों का बड़े सौभाग्य आप लोगों। इसलिए महाराज जो उपदेश देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा जैसे अपना जीवन में जैसे उतार सके। देखिए ये लोग जो अंग्रेज लोग कहाँ कहाँ से आए, ऐसे कोई कंट्री नहीं जिस कंट्री से ये लोग नहीं आए, कहाँ ये लोग क्रिश्चियन होकर के गला में तुलसी कंठी है, तिलक है, इनको हाथ में देखो माला की झोली है, और कैसे भगवत कथा आप लोग देखो कितने कम कम उम्र गए, लेकिन हम लोग हिंदू नाम से ही, लेकिन किसी को गला में कोई तुलसी कंठी नहीं, कोई तिलक नहीं, हमारा कोई चोटी नहीं, भगवत नाम से कोई संपर्क नहीं। अगर आप लोग को पूछो कोई गीता की एक श्लोक बोलो, ऊपर देखोगे कोई भी एक गीता का श्लोक, यहाँ पर जितने हिंदू बोलते हैं हमारा मूल ग्रंथ गीता है, एक श्लोक पूछो तो किसी को कोई भी नहीं बता पाएंगे। इनको बोलो ये पूरा के पूरा गीता आपको सुना देंगे, पूरा पूरा भागवत सुना देंगे, हम किस चीज का हिंदू है, ये लोग कहाँ सारा दुनिया से आकर भक्ति करते हैं। इसलिए इनसे हम लोगों को शिक्षा लेकर के अपना जीवन को सदगुरु चरण में आश्रय करके जीवन में हमको भगवत भक्ति करनी चाहिए। हम यही बोल कर अपना पानी को समाप्त देता हूँ। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भाई वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
मैं गुरु की बात कर रहा था, बहुत से कर्मी लोग गुरु होते हैं जिसको कुल गुरु कहते हैं, तो कुल गुरु हैं, भले ही वो बड़ी सिगरेट पीते हों, भले ही कुछ करते हों, उनको ज्ञान नहीं है तत्व वस्तु का, उनको भक्ति नहीं है, फिर भी उसे गुरु मान लेते हैं, तो इस गुरु से क्या होगा। उसी प्रकार से जो लोग मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे जो मायावादी अद्वैतवादी जो गुरु हैं उनको धारण करते हैं, तो उसमें सेवा की तो कोई बात नहीं, उसमें गुरु की भी बात नहीं, हम भी ब्रह्म हैं और वो ब्रह्म है, तो उनसे कोई शिक्षा लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसलिए अद्वैत बाद में गुरु नाम की कोई चीज नहीं, केवल दिखलाने के लिए है। यह हमारा स्वरूप धर्म नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत में पहली आरंभ कर दिया है, जो वेदों का विभाग करने वाले व्यास जी थे, जिन्होंने पुराणों को जगत में प्रकाश किया, जिन्होंने महाभारत प्रकाश किया, और उस महाभारत में गीता को प्रकाश किया, और इसके अतिरिक्त वेद के जिन मंत्रों का हम सामंजस्य नहीं कर सकते थे, मालूम होता था कि ये वेदांत में परस्पर विरोधी बातें हैं, भगवान का रूप नहीं है, किंतु सर्वत्र देखते हैं। भगवान के पैर नहीं है किंतु चलते हैं। उनका जन्म नहीं है किंतु वो हम देखते हैं कि कृष्ण राम का जन्म हुआ। तो इसका सामंजस्य नहीं कर पाते थे। इसके लिए वेद शास्त्रों के वचनों को लेकर उन्होंने वेदांत दर्शन बनाया। वेदांत दर्शन समझ में आना सहज नहीं, इसलिए सरल सहज भाषा में उसकी व्याख्या भी लिखी। उस व्याख्या का नाम श्रीमद् भागवत है। तो ये ऐसे भागवत प्रकाशित करने के पहले सब कुछ कर चुके थे और इन व्यास को नारायण कहते हैं। ये नारायण ही हैं या नारायण के प्रकाश हैं, सर्वज्ञ हैं। किंतु ये सरस्वती नदी या किस नदी के तट पर ये निवास कर रहे थे और उनके मन में ये भावना आई, मैंने सब शास्त्रों को प्रकाशित किया, सभी लोग हमारे निर्देश के अनुसार से अपना धर्म कर्म करते हैं, हमारे ग्रंथों का बड़ी श्रद्धा से पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करते हैं, किंतु मेरा चित्त ही खूब नहीं, दूर नहीं हुआ, हमारे ही चित्त में खोब है, तो फिर उन लोगों का खोब चंचलता कैसे दूर होगी। हमारा मन ही नहीं प्रसन्न है, जो स्वयं नहीं प्रसन्न है वो दूसरों को क्या प्रसन्न कर सकता है, नहीं कर सकता। हमारा मन दुखी क्यों है, इतना सब हमने किया तभी मन खुश नहीं क्यों। और इतने में भी उनकी इस भावना को देखकर उनके गुरु नारद जी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने देखा और पूछा क्या हो गया। तो उसी समय नारद वहां उपस्थित, भाई गुरु ऐसा ही होना चाहिए, यदि किसी सच्चे सेवक का मन चंचल और क्षुब्ध हो जाता है तो गुरु से जान करके तुरंत उसकी सहायता करते हैं, यदि गुरु ऐसा ना हो तो वो गुरु करने से लाभ किया। नारद जी उसी समय में उपस्थित हो गए, वे सर्वज्ञ हैं, हमारे आदिम गुरु में से एक हैं, आदि गुरु हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी उनके ये शिष्य हैं और बेटे भी हैं, उपस्थित हुए और उन्होंने व्यास जी से पूछा, तुमने तो सारे धर्म ग्रंथों को लिखा और ऐसे तैसे ही नहीं लिख दिया, अनुभव करके लिखा और फिर भी तुमको सुख शांति नहीं है, क्यों? तुम दूसरे को सुख शांति देना चाहते हो और तुम्हारे अंदर में ही सुख शांति नहीं, तो फिर दूसरे को क्या सुख शांति दे सकते हो, नहीं क्यों? उन्हें जी गुरु जी यही तो बात है, रोगी को अपना रोग मालूम नहीं पड़ता, जिस रोगी को अपना ही रोग नहीं मालूम है दूसरों को क्या वो रोग दूर करेगा। आजकल जितने भी डॉक्टर लोग प्राय वैद्य इत्यादि होते हैं ऐसे ही होते हैं, अपना बुढ़ापा तो रोक नहीं सकते। एक कलकत्ते में सबसे बड़े डॉक्टर को देखा, हाथ कांपता था, बूढ़े हो गए हैं, चल नहीं सकते थे और उनको बदहजम की बीमारी थी और वो दूसरों का रोग ठीक करने जा रहे, तो क्या ठीक करेंगे, नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जे गुरु जी मैं रोगी हूं, आप डॉक्टर हैं, आप बतलाइए हमको क्या रोग है, क्यों हमारा चित्त चंचल और चित्त में क्षोभ है। उन्होंने कहा तुमने धर्म अर्थ और मोक्ष की प्रधानता देकर के शास्त्रों में जो बतलाया है मनुष्य के लिए जीव मात्र के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की आवश्यकता है, इस पर तुमने जितना जोर दे करके लिखा कहा उतना भगवान के संबंध में उनकी लीलाओं के संबंध में तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने ये बतलाया मनुष्य को अपना वर्णाश्रम धर्म करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए और इससे स्वर्ग मिलेगा, किंतु ये भी है कि वहां स्वर्ग में जाने के बाद में उसके फल को भोग करके फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है, तो लाभ क्या हुआ, फिर इसी जगत में आकर के उसी रोग से वो त्रस्त हो जाता है। धर्म अर्थ रुपया पैसा, केवल रुपया पैसा नहीं, हम जिस चीज की अभिलाषा करते हैं स्त्री पुत्र परिवार धन जश पद इत्यादि, इससे हम सुखी रह सकते हैं नहीं, तो तुमने इसकी भी बड़ी व्याख्या की। और मोक्ष, इस दुखों से छुटकारा पा जाए, तो ये सब की व्याख्या तूने की, किंतु इसका मूल कारण और इसका मूल निदान आपने नहीं बतलाया। जो भगवान को भूलने से हमारी ये दुर्दशा है और उस भगवान का स्मरण करने से ही हमारा सब दुख दूर हो जाएगा, ये आपने नहीं लिखा। वो भी हुआ कैसे, कृष्ण स्वयं भगवान है, आपने नहीं लिखा कृष्ण तू भगवान स्वयं, आपने नहीं बतलाया। आपने ये बतलाया कि नहीं भगवान के जितने रूप हैं ये सब भगवान कृष्ण के ही रूप हैं, राम निसिंह कल्कि बामन। आपने स्पष्ट भाषा में क्या लिखा, शंकर हनुमान भगवान की शक्ति है, इसलिए वे दास हैं, दुर्गा काली इत्यादि सब उनके दास दास लिखा, तो ये तो नहीं लिखा। तुमने लिखा जो वृंदावन में ये शंकर जी गोपी बन करके और रामलीला में हनुमान बन करके यही शंकर जी भगवान कृष्ण और राम की सेवा करते हैं, तो ये तो नहीं लिखा। तो फिर तुमने ये लिखा जे ये परब्रह्म जो सारे जगत की स्थिति और प्रलय करने वाले और पोषण करने वाले ईश्वरों के भी ईश्वरों के आदि ईश्वर और स्वयं अनादि हैं, लिखा। क्या ये परब्रह्म, इस परब्रह्म को जिसकी अनंत शक्ति है सर्वशक्तिमान है, इनको एक गोपी ने बांध दिया वो डुकर डुकर करके रोने लगे, लिखा। ये तो नहीं लिखा। अरे आपने लिखा ये मक्खन और मिश्री के लिए लचता और रोता है, इसको भूख लगती है, लिखा, तो ये तो नहीं लिखा। इसके बाद में क्या आपने लिखा ये परब्रह्म हो करके भी गोपियों के प्रेम के लिए तरसते हैं, उनसे प्रेम की भीख मांगते हैं, लिखा नहीं। क्या ये परब्रह्म कहते हैं न पारे हम निरवध्य संयुजा, कि हे गोपियों तुमने जिस प्रकार से निर्मल अनुराग से संसार के बंधु बांधो, यहां तक कि लोक लज्जा वर्णाश्रम धर्म सबका भली भांति परित्याग कर हमारे समीप में आई, मैं तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं चुका सकता, कोटि कोटि जन्मों में देता हूं जैसी लंबी आयु पाने पर भी नहीं कर सकता। लिखा है? तो नहीं, तो क्यों नहीं लिखा? मैं जानता नहीं था। इसको दो रूप में सामंजस्य किया जा सकता है। यदि व्यास जी नारायण हैं तो उनको सब कुछ जानना चाहिए, तो क्यों नहीं ऐसा लिखा? तो वो कहते हैं जे नहीं जानते तो ये क्या भूल बोल रहे हैं, या हमें ठगने के लिए बोल रहे हैं, या किस लिए बोल रहे हैं, या सचमुच में नहीं जानते हैं। इसको सचमुच ही कहा जा सकता है। क्यों? भगवान नारायण जो हैं या कृष्ण, ये प्रेम के विषय हैं, भक्ति के विषय हैं, ये सेवा का आस्वादन करने वाले हैं भक्तों के, स्वयं सेवक तत्व नहीं। कभी कभी उनकी बड़ी ललक होती है, मैं सेवक बन जाऊं और सर्वश्रेष्ठ सेवकों की मैं सेवा करूं, मैं गोपियों की, मैया जसोदा नंद बाबा की सेवा करूं। ये कभी कभी आती तो है, तो इसलिए नारायण की वही दशा है। अर्थात व्यास जी, ये तो मैं नहीं जानता, तुमने अच्छा बात, एक बात करो, अपने चित्त को भक्ति के द्वारा समाहित करो। भक्ति का सहज है किसको? श्रद्धा पूर्वक किसी के चरणों में, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण को भक्ति करो। यही भक्ति की सबसे छोटी से छोटी छोटा खंड है। भक्ति का इस जगत में सबसे छोटा स्वरूप ये श्रद्धा है। श्रद्धा शरणागति के द्वारा पूर्ण रूप से संपन्न होता है। यद्यपि शरणागति भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का दरवाजा है। शरणागति होने से ही भक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। शरणागति होने से जब मैं आपका शरणागत होता हूं, यह भक्ति नहीं है, उनकी सेवा होनी चाहिए। इसलिए आप इन सब चीजों को स्पष्ट लिखिए। कृष्ण की बाल्य लीला, उनका जन्म, बाल्य लीला, और अभी जितने भी उनकी लीलाएं बतलाई, मथुरा छोड़कर के गोकुल क्यों गए, फिर गोकुल में रहकर असुरों का संहार कर, और फिर मथुरा में कंस का संहार इसलिए किया, इसके बाद में द्वारका में कौन कौन सी लीला की, किस प्रकार से जसोदा मैया उनको ओखल में बांधा, इत्यादि जितनी भी लीलाएं हैं कृष्ण की, सभी तुम प्रत्यक्ष दर्शन करोगे उस समाधि में। इतना कह करके वो चले गए। और व्यास जी ने क्या किया? भक्ति अर्थात तो आत्मसमर्पण पहले गुरु जी के चरणों में किया, और उनकी कृपा से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया। मैं कुछ नहीं जानता, स्वाहा, मैं आपके चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूं। जहां भी मंत्र है उसमें यह स्वाहा आत्मसमर्पण की बात है, स्वाहा आत्म विसर्जन करना। मैं कुछ नहीं जानता, आप कृपा करके सही जाने जेहु देहु जनाई। श्रीमद्भागवत में भी, उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया, जिसको अपना लेते हैं, हाँ, नायम आत्मा प्रवचन, तो मैं जिसको जना दूंगा वही जानेगा, दूसरा नहीं जान सकता है। ब्रह्मा नहीं जान सके तो और लोगों की तो बात क्या। इसलिए भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया। आप लोग गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं, सुने होंगे। एक भगवत बुद्ध हैं और एक गौतम बुद्ध हैं, सुदोधन नगरी वाले क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने वाले। ये भगवत बुद्ध नहीं है, ये गए गया में और बोधि वृक्ष जहां पर कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वहां पर बैठ करके समाधि लगाई और उन कितने महीनों तक समाधि लगाए, उनको कुछ मालूम नहीं हुआ, न कुछ देखा, न अनुभव हुआ, न कुछ। तो उन्होंने कहा जे भगवान है ही नहीं। वेद शास्त्र उपनिषद जो भगवान के संबंध में लिखते हैं, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, ये बोगस बात है, झूठी बात है। वेद शास्त्र भी झूठे हैं, भगवान भी झूठे हैं। क्यों? किसी के चरणों में शरणागत नहीं हुए, इसलिए उनको कैसे ऐसे ज्ञान प्राप्त हो गया। और व्यास जी ने क्या किया? भगवान के चरण, पहले गुरु के चरण में, भगवान के चरण में आत्मसमर्पण किया और बोले जी मैं बांस की बंसी हूं। जैसे बांस की बंसी में कोई रुकावट नहीं होती, मैंने ऐसे ही आपके चरणों में समर्पण कर दिया, आप कृपा करके अपने स्वरूप का प्रदर्शन। प्रचोदयात, प्रचोदयात, आप जैसे हैं, जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी लीलाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में प्रचोदयात, प्रकृष्ट रूप से देखो। भगवान उनकी प्रार्थना के अनुसार में उनकी शरणागति देख करके अपूर्ण रूप से ये शरणागत हो, बस झट जैसे थे वैसे ही अपने को रियलाइज कर दिया, वैसे ही अपने को प्रकाशित किया। भक्ति जोगे न सम्यक मनसा प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जद अपाश। भगवान का पूर्ण रूप में देखा, क्या रूप में देखा? श्याम सुंदर, नटवर वेश, गोप वेश, बेनुकर इत्यादि देखा और नव किशोर नटवर रूप में देखा। और देखा क्या? भैया यशोदा नंद बाबा, सारे ब्रजवासी लोग, सारी गोपियां, उनकी सारी शक्तियां और शक्तियों का मूल श्रीमती राधिका को उनके साथ में देखा और किस प्रकार से सभी लोग उनकी सेवा करते हैं ये देखा, और कृष्ण भी उनके किसी प्रकार से वशीभूत हैं ये भी देखा। उनकी जितनी भी लीलाएं थी, दान बंधन इत्यादि जन्म लीलाएं, जो कैसे एक साथी में गोकुल में और मथुरा में प्रकट है, यहां पर प्रकट हुए, वहां पर जन्म लीलाएं और सब लीलाओं को देखा, बलदेव प्रभु को भी देखा, भगवान के अवतारों को भी साथ में देखा। और ये देखा जो लोग भगवान उस भगवान की सेवा को भूल गए वो संसार में चले आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से भोग करते हैं, और जो लोग गुरु के अनुगत्य में इनका भजन करते हैं और भजन करते 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 परिपक्व दशा में उपस्थित हो जाते हैं भक्ति की, अर्थात श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो अंत में प्रेम, शुद्ध प्रेम पा करके और भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। फिर उनको जागतिक दुख कष्ट जन्म मरण का शोक इत्यादि नहीं रहा, ये भी देखा, और देख करके जीव के कल्याण के लिए इन भगवान की लीलाओं को जो समाधि में देखा था अक्षर के रूप में उन्होंने प्रकट किए, अक्षरात्मक रूप में। वही भगवान का अक्षरात्मिक रूप ही शब्द ब्रह्म अथवा भागवत है। यह निर्मल प्रमाण है, अमल प्रमाण है, इस पर विश्वास किया जाए। भले ही वेद को न समझने के कारण उस पर संदेह हो जाए, कहीं कहीं वो अधिकार के अनुसार में कहीं कहीं पर बहुत सी ऐसी अटपटे बातें उसमें हैं जो हमारे लिए उचित नहीं, कैसी मांस भक्षण किया भी जा सकता है। यज्ञ के समय में ये भी लिखा, जिसका पीछे से हमारे बुद्ध इत्यादि ने इसका विरोध किया। किसी किसी समय में शराब का भी उपयोग किया जाएगा, यज्ञ का सोमरस पान इत्यादि, इसका भी पीछे से भागवत ने विरोध किया। तो कुछ ऐसे बातें हैं श्रुतियों में जिसमें यज्ञ करने की बात है और स्वर्ग जाने की बात है, इसका भी श्रीमद् भागवत इत्यादि में गीता में विरोध किया गया। तो श्रुतियों में ऐसी बातें हैं, किंतु श्रीमद् भागवत यह जस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यतः पुंसः शोक मोह भयापहा। व्यास जी ने समाधि में, समाधि माने क्या होता है, समाधि भगवान के साथ में जब उसकी सम बुद्धि हो जाती है, अर्थात तो भगवान चिन्मय है और उस चिन्मयता को भी आंशिक रूप में ये प्राप्त हो जाता है। भगवान की लीला कथाओं को समझने के लिए उसकी बुद्धि उपयुक्त हो जाती है और उस समय में जो भगवान का वो दर्शन करता है वो समाधि दर्शन है। इसलिए श्रीमद् भागवत काल्पनिक कोई ग्रंथ नहीं, ये क्या है, समाधि की भाषा है। समाधि में अनुभव किया, जस्या वै श्रूयमाणायाम, जिसको इस श्रीमद् भागवत का एक कथा को यदि कोई सुनेगा, इतनी तत्व की बातें हैं, तत्व ज्ञान है से भरा पड़ा। तत्व ज्ञान माने क्या, शरीर क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, आसक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, प्रेम तत्व क्या है, गोपी तत्व क्या है, ये सब चीजें अपने आप उसके समझ में आएगी जो लोगों को नहीं होती, होना भी असंभव है। और शोक मोह भय सब दूर हो जाता है सदा के, ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो शोक मोह भय दूर हो करके भगवान के चरण में भक्ति लग जाए, दूसरा कोई भी ग्रंथ नहीं है। इसके लिए पहले चरण में गीता की आवश्यकता है, सब साधारण के लिए वो प्राथमिक पुस्तक है। कैसी प्राथमिक पुस्तक, और माने एप्पल, ए एप्पल, आ माने आम, ख माने खरगोश, ये पाठ पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। बच्चे वो लाल पुस्तक बड़ी सुंदर सी खरीद करके और देखते हैं, अ मने आम, आ मने आम, ई मने इमली, ख मने खरगोश, ग मने गाधा इत्यादि, ये सब पढ़ते हैं। लिख पढ़ते नहीं सकते, बस ऐसे ही करते उसको धीरे धीरे, क्या है वो जो किंडर गार्डन सिस्टम से पढ़ाते हैं। और यह है गीता जिसमें शरीर वस्त्र है, जीवात्मा ही आत्मा है, कैसा कर्म होना चाहिए, भगवान के लिए ही कर्म होना चाहिए इत्यादि तत्वों का विवेचन हुआ और अंत में बतलाया गया सर्वधर्मान प्रत्यजमान एक शरण, यह अंत में बतलाया गया। ये शरणागति भगवान की भक्ति के दरवाजे तक ले आई और इसके बाद में भागवत क्या करेंगे, कैसे भगवान की सेवा किन किन रूपों में की जाती है, प्रहलाद महाराज जी से, ये नारद जी से आरंभ किया, फिर व्यास, ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, चित्रकेतु महाराज, हाँ भरत महाराज पहले, प्रहलाद महाराज के समक्ष भीष्म पितामह इत्यादि की सेवा की बातें बतलाई और अंत में तब पर ब्रज में पहुंचे, किस प्रकार से उनके कृष्ण के नंद बाबा के सेवक लोग कृष्ण की सेवा करते थे, हनुमान जी सेवा करते हैं बड़े प्रेम से, रामचंद्र जी की, और वहाँ के सेवक कौन? नंद बाबा के सेवक कृष्ण को गोदी में लेकर के पुचकारते हैं, लाला लाला कहते हैं और बड़े प्रेम से। उनका एक और नर ढंग निराला है। सखा लोगों के संबंध में मैंने कल बतलाया था कैसे अपने मुख से भी कोई प्यारी मीठी स्वादिष्ट वस्तु को निकाल करके कृष्ण को खिला देंगे और उनके कंधे पर परब्रह्म के कंधे पर चढ़ जाएंगे। हनुमान इत्यादि के लिए संभव नहीं। इसी तरह से उनसे भी श्रेष्ठ नंद बाबा यशोदा जी का प्यार है, उससे भी अधिक गोपियों का है। गोपियां भी तरह तरह की हैं, 360 तरह की गोपियां, उनमें भी राधा चंद्रावली जी उनकी सर्वशक्ति और उनकी दासियां जो रूप मंजरी इत्यादि हैं, उनकी सेवा ही हम लोगों के लिए काम है। ये सब चीजों को देखा और देख करके श्रीमद भागवत, इसलिए श्रीमद भागवत को अमल प्रमाण बतलाया गया। जो इस भागवत के एक अक्षर आध अक्षर एक श्लोक आधा श्लोक एक चरण एक अक्षर भी इसका समझ बूझ करके पाठ करेगा उसको भक्ति जरूर होगी और शोक मोह भय से सदा के लिए दूर हो जाएगा, प्रेम होगा वो समझेगा, तब कृष्ण की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। बिना प्रेम के कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि कृष्ण का शत्रु बन सकता है। जैसे कि कंस रावण ने राम को देखा किंतु तो उसका क्रोध उगल गया और वो सीता जी को ही हर लिया, राम की सेवा तो दूर रहे। इसलिए भगवत भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और इसमें प्रेम प्रयोजन है। भगवान के चरणों में आत्मा का प्रेम हो, यही भागवत का सार निष्कर्ष। गुरु माने यही है कि इस प्रेम को दे सके यदि कोई गुरु जिसको स्वयं प्रेम है, सदाचार संपन्न है, तत्व ज्ञान से संपन्न है, भगवान की अनुभूति है और संसार से भी विरक्ति हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। एकलव्य को गुरु सेवक मत समझेंगे, वो तो गुरु द्रोही था, बहुत लोग समझते हैं। उनके गुरु ने अंगूठा मंगा काट करके दे दिया, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है उसने भगवान अपने गुरु की बात क्यों नहीं मानी। कर्ण ने भी अपने गुरु परशुराम जी को धोखा दिया, ब्राह्मण बाल बन करके गए ब्रह्म विद्या के लिए और धनु विद्या के लिए, यह भी शुद्ध गुरुत्व नहीं है। इस प्रकार से देखते हैं उपनिषदों में उद्दालक का आरुणि का, इन्होंने अपने गुरु की सेवा की किंतु उनसे क्या प्राप्त हुआ? ब्रह्म ज्ञान। इसलिए यह भी शुद्ध नहीं है। नारद जी शुद्ध है, यह कृष्ण प्रेम को दे, जहां जाते हैं वहीं पर कृष्ण प्रेम की वर्षा कर देते हैं, इसलिए नारद की लाइन में आने वाले तत्वज्ञ रसिक वैष्णव यदि हो उनसे गुरु ये दीक्षा मंत्र इत्यादि लेकर के भगवान के क्षेत्र में भक्ति के क्षेत्र में आना ही हमारा परम धर्म है। काफी समय हो गया, आज यही पर मैं हरिकथा का विश्राम दे रहा हूं। शाम को हनुमान बगीचे में बाटिका में प्रवचन होगा, सुनने के इच्छुक लोग वहां पर जा सकते हैं। कितना बजे से? 5:30 से लेकर के 7:30 तक होगा, उसमें आ सकते। ये कीर्तन करो, नहीं ये करें, यो